ओम शांति। कुमार जीवन में अधिकार बड़ा है या कर्तव्य?
कर्तव्य।
अधिकार, अधिकार अर्थात राइट्स, अधिकार अर्थात पावर, ऑथोरिटी, इंचार्ज, संस्था ब्रह्मा कुमारी से, इसमें अधिकार बड़ा है या कर्तव्य बड़ा है? उत्तर तो सही दिया है, अधिकार से भी श्रेष्ठ कर्तव्य है। बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया है, माताओं को निमित्त बनाया है, परंतु कर्तव्य जो है वो अधिकार से श्रेष्ठ है। इस बात की निरंतर स्मृति रखनी है, क्योंकि अधिकार में मैं आता है। मुझे क्यों नहीं दिया गया, इनको क्यों दिया गया, मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट्स। दूसरी एक बात है बैलेंस, ये एक दूसरी बात है जो कुमार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब बैलेंस नहीं होगा तो सीधा नीचे उतरेंगे। कुमार जितनी तेजी से ऊपर चढ़ते हैं पुरुषार्थ में, उतनी ही तेजी से विकारों में नीचे गिरते हैं। एक तरफ फास्ट ऊपर कि बाकी नहीं जा सकते उतने, परंतु गिरना भी उतना ही फास्ट होता है, क्योंकि गिरने की प्रक्रिया पांच विकार में से काम विकार के द्वारा होती है। काम विकार को जो जीतते हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं, परंतु जब काम से गिरना होता है तो वो तेजी से गिरते हैं, और वो कुमारी गिरते हैं। बहने जो है वो ऊपर इतना कुमार हो इतना नहीं जा सकती। अगर कुमार ठान ले कि जाना है, वैसे तो कुमार कुमारी कोई भेद नहीं है, परंतु फिर भी मनुष्य की साइकोलॉजी के अनुसार अगर ठान ले तो बहुत ऊपर जा सकता है, परंतु पतन भी वैसा ही होगा फास्ट अगर गिर जाए तो। कल की मुरली में था ना, एक तरफ तख्त,
तख्त
नीचे तख्ता, ऊपर तख्त है, बाप का दिल तख्त, उस पर वो विराजमान है जिनकी दिल एक बाप, दिलाराम बाप के साथ है, परंतु नीचे आना अर्थात फांसी का तख्ता, माया के फांसी का तख्ता, वो नीचे है और सीधा नीचे चले जाती है, रसातल में लेके चला जाता है। तो एक तो कर्तव्य, दूसरा बैलेंस, और तीसरा लीकेजेस को रोक देना ताकि नीचे ना जाए आत्मा, क्योंकि नीचे अगर गई तो बहुत तेजी से जाती है। इसके लिए जहां जहां लीकेज है, जहां जहां संभावना है कि यहां से नीचे जा सकती है, उनको रोक देना। वो सारे संकल्प कि जो कमजोर करते हैं आत्मा को, उस दिन स्लोगन था ना, हार्ड हार्ड वर्कर हो तो क्या करो, हार्ड वर्कर हो तो क्या करो, स्थिति में भी हार्ड, हार्ड स्थिति अर्थात नष्ट मोह स्थिति, कठोर एक रीति से, तो ऐसी कठोर स्थिति चाहिए, मजबूत स्थिति चाहिए, शक्तिशाली स्थिति चाहिए, कि कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कल की मुरली में था ना, विजयी अर्थात सदा खुश, कोई भी सर्कमस्टांस में दुख की लहर नहीं आ सकती है, सदा हर्षित, दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हो गई, प्रभात में आ गए, बाबा के महावाक्य थे ना, प्रभात में आ गए, विजय का झंडा पक्का हो, विजय का झंडा सदा लहराता रहे, विजय का झंडा नीचे ना हो, विजयी रतन हो। तो सदा इस बात का ध्यान रखना है कि हम विजयी हैं, विकारों को हमने जीता था और फिर जीतेंगे। ऊपर से असंभव सा लगता है, परंतु संभव है, क्योंकि कल भी कहा था ना, अनगिनत बार विजयी हुए हो, याद है ना कल की मुरली
शिवानी
पार्टी नंबर 4,
शिवानी दीदी ने पढ़ी थी मुझे, तो लास्ट के दो पैरा छोड़ दिए।
अच्छा नहीं, पर उन्होंने छोड़े, पर हम क्यों छोड़े?
हाँ हमने पढ़े हुए, अभी नहीं पढ़े होंगे।
ये भी एक पेपर था सबके सामने।
मुरली में तो कभी ऐसा भी हो जाएगा कि भाई आज कुछ प्रोग्राम है, आज आधा घंटा पढ़ेंगे
या फास्ट पढ़ देंगे
या फास्ट पढ़ देंगे, परंतु हमारा मुरली का चिंतन किस पर आश्रित है फिर? मुरली पढ़ने वाले पर। अगर नहीं पढ़ी जाए तो सेंटरों पर जाओ तो बड़ा दुख होता है कभी कभी। अगर कोई आ जाए या हम ही चले जाए, कोई मधुबन से चला जाए, तो बहने फटाफट मुरली खत्म करती है, अभी आप बोलो। अरे मुरली महत्वपूर्ण है या भाषण महत्वपूर्ण है? कभी कभी प्रश्न उत्तर स्लोगन वरदान, बस अभी भाई साहब बैठो, क्योंकि आज भाई साहब आए हैं, मधुबन से आए हैं, तो आप सुनाओ। मुरली रह गई बाजू में, तो अगर स्टूडेंट ये सोचे कि भाई आज तो मधुबन के भाई का अनुभव सुना, मुरली को छुट्टी, तो ये श्रीमत है। चाहे कोई भी पढ़े वो तो दूसरी बात है, परंतु हमारा जो अध्ययन है वो चालू रहे। हमें लेना देना मनुष्य से नहीं है, हमें लेना देना भगवान से और उसके महावाक्यों से। बस हमारी लगन इन दोनों में है, फिर वो दूसरी बात है कि हम दूसरों के अनुभव से सीखे, दूसरों के अनुभव सुने, दूसरों का चिंतन सुने, उससे सीखे, उनकी चलन से सीखे, उनके विचारों से सीखे, वो दूसरी बात है। परंतु हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत फोकस्ड केंद्रित है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। लक्ष्य से भटक गए तो भटक गए। पाश्चात्य देश में एक मनोवैज्ञानिक हुआ है सिगमंड फ्राइड, बहुत बड़ी क्रांति की है उसने। काम विकार का जो फैलाव हुआ है संसार में उसी के बाद हुआ है, क्योंकि उसने जो कुछ अध्ययन किया 100-150 साल पहले, उसके निष्कर्ष यही थे कि मनुष्य में काम वासना हरेक में है, और आज तक उसको दबाया गया है धर्म के नाम से। इसके लिए मनुष्य और ही ज्यादा विक्षिप्त हुआ है। अभी इसको दबाना नहीं है, इसको बाहर निकालो, ये उसने सिद्धांत रखे। वैसे बाबा जो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा पतित भारत बना और सबसे ज्यादा पावन भी भारत बनता है। विश्व इतना पतित नहीं बना है, क्योंकि ये फ्राइड के सिद्धांत अभी अभी आए हैं, पहले नहीं थे। जबकि भारत में काम विकार कब से चालू है? द्वापर से चालू हो गया, उनके उधर इतना नहीं चालू था। जो आपको हमको आज लगता है कि ये तो भारत के बाहर बहुत ज्यादा है, पर ये इतना पहले नहीं था, ये अभी अभी हुआ है। जब स्वीकृति मिल गई, विज्ञान ने स्वीकृति दे दी कि जरूरी है, उसके जीवन की एक कहानी है कि वो कभी एक होटल में जाके रुकता है, तो उसे सोना होता है, एक दिया होता है, उसको सोचता है दिए को बुझा दो, दियो को बुझाने की कोशिश करता है, फूकता है फूकता है, बुझता ही नहीं है। पूरी रात उसको उस दिए में प्रकाश में ही सोना पड़ता है। दूसरे दिन वो मैनेजर से जाके कहता है कि ये जो दिया है मैंने इसको बहुत फूका, परंतु ये बुझा नहीं, क्यों? तो बोले मैनेजर ने कहा कि तुम्हारे फूकने से ये दिया बुझेगा नहीं, क्योंकि ये विद्युत का है, इलेक्ट्रिसिटी का दिया है। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, वो सब चेतन स्तर पर कर रहे हैं, और विकार जो है वो अवचेतन में है। इधर से कितना भी फूको, कितने भी संकल्प करो, वो वैसे के वैसे ही है वहां, क्योंकि हम उस अवचेतन तक पहुंच ही नहीं रहे। अवचेतन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। एक है कॉन्शियस माइंड और तहखाना जो है अंडरग्राउंड सबकॉन्शियस माइंड, जिसको ज्ञान की भाषा में हम संस्कार कहते हैं आत्मा में। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, अर्धचेतन मन है, अंतर मन है, इनर माइंड है, यहां पे सब कुछ छिपा हुआ है, सारे विकार की जड़ें यहां है। हम ऊपर से संकल्प कर रहे हैं, वो पहुंच ही नहीं रहे वहां तक। इसके लिए लोग 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर परिवर्तन कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। वो बस जैसे वो दिया जो फूक रहा है और वो बुझ ही नहीं रहा है, वो मिट्टी का दिया है ही नहीं, वो दिया है विद्युत का। तो ये जो विकार भी ऐसे ही है कि जो उन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, केवल मुरली सुनना, पढ़ना, मनन, इतना भी पर्याप्त नहीं है, कुछ और पुरुषार्थ करना पड़ेगा ताकि उस गहराई तक पहुंच सके। और उसकी जो जड़ें हैं, हर एक कमजोरी की एक जड़ होती है जो कहीं ना कहीं डीप है, इतनी डीप है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे उस तक, वहां तक हम पहुंचे और फिर जड़ से उसको निकाल दें अवचेतन में जाकर, और दो समय इसके लिए उपयुक्त है, जिसमें ये अगर चेतन मन है और ये अवचेतन मन है तो उसके बीच में जो एक बैरियर है जिसको कहते हैं प्री कॉन्शियस, ये उठता है ऐसे सुबह सुबह और रात को सोते समय, तब यहां से इधर जो भी डालो तो जाएगा। हम जो संकल्प कर रहे हैं कर ही रहे, ऑलरेडी सब कुछ पुरुषार्थ तो चालू है, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं परंतु उसमें और तीव्रता चाहिए। तो सुबह उठने का जो हमारा समय है और उठते से ही पहले 10-15 मिनट जो टाइम है, इसमें जो श्रेष्ठ संकल्प किए जाते हैं वो सीधा इधर जाते हैं। दूसरा समय है सोने का, सोने से पहले का नहीं, जब बिस्तर पे लेट गए और अभी नींद आने वाली है, वो जो समय है जिसमें अभी नींद और जागृत इन दोनों के बीच का जो समय है, वहां जो संकल्प किए जाते हैं वो सीधा सबकॉन्शियस में जाते हैं और वही स्वप्न में भी आते हैं और वही दूसरे दिन भी उठते ही वो संकल्प आता है। तो जो कार्य करना है विकारों को जीतने का, जो कार्य करना है कमजोरियों से मुक्त होने का, वो इस समय करना है। और अगर सारे दिन भर ही, क्योंकि हमने कहा कि चेतन के जो संकल्प है वो प्रभावित नहीं करते इसको, अवचेतन वैसा ही रहता है, परंतु अगर लंबा समय चेतन में संकल्प आते रहे तो वो चेतन ही अवचेतन बनता है, कॉन्शियस माइंड बिकम्स अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मुरलियों में आता है ना, मैं बहस हूं, मैं बहस हूं, मैं बहस हूं, सन्यासी कहते। अभी अगर हमने कहा तो हमारा मन थोड़ी स्वीकार करता है, पर अगर हाँ हमने बहुत नियमित दिन रात लगन से सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प मैं भैंस हूं और रात को सोते समय मैं भैंस हूं और दिन भर में भी उसी के ऊपर चिंतन करे, तो हो सकता है एक साल के बाद अगर कोई कहे इधर से जाओ तो कैसे जाऊं। तो एक ही संकल्प अगर लंबा समय चले मन में बुद्धि में तो वो अवचेतन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे फूकने की, वो दिन रात भर फूकता रहा परंतु वो बुझा नहीं, क्योंकि वो जो संकल्प थे, वो जो फूकने की प्रक्रिया थी, वो चेतन मन पर चालू थी, सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच रहा था। इसके लिए दीर्घकालीन चिरकालीन पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का संकल्प। ये मार्ग बहुत स्लो है, एकदम उन्नति नहीं होती है, यहाँ
शॉर्टकट भी नहीं,
कोई शॉर्टकट नहीं है और उन्नति नहीं होती है। और परिस्थितियां साथ आ रही है, कलयुग का समय है और सेवाओं का विस्तार है, अब कैसे कोई पुरुषार्थ करे। ये पुरुषार्थ में तो बहुत ज्यादा एकांत चाहिए, बहुत ज्यादा मौन चाहिए, बहुत ज्यादा चिंतन चाहिए, एक एक कमजोरी को स्टडी करना और उससे मुक्त होना बड़ा पुरुषार्थ है। तो कल की मुरली हम थोड़ी रिवाइज करेंगे। पहले कल की मुरली में क्या कहा बाबा ने,
योगी 1-2-3,
1-2-3 थर्ड नंबर वाले कौन से योगी है, डेली वेजेस, डेली वेजेस होते हैं ना, नौकरी करते हैं, दैनिक मजदूरी, खाया और कमाया और खाया, जितना कमाया उतना खाया, 2 घंटे योग, 2 घंटे फल प्राप्त किया, खुशी का गीत, खुशी से हमेशा नहीं जाचेंगे, कभी दिल शिकस्त, कभी दिल खुश, कभी दिल शिकस्त, जैसे कि नौकरी कर रहे फरियाद वाले हैं, मांगते रहते हैं पर कभी एकरस नहीं हो पाते, कभी संतुष्ट खुद भी नहीं हो पाते, स्टॉक भी भरपूर नहीं है, और यहां तो लंबे समय का स्टॉक जमा करना है। वो निम्न कोटि के योगी है, पर है तो योगी, भोगी नहीं है। ये जो कैटेगरी है ये योगियों की है, इसके लिए ये सारे श्रेष्ठ है, क्योंकि भोगी एक अपने आप में दूसरी श्रेणी है, ये भोगियों की कैटेगरी नहीं है, ये योगियों की कैटेगरी है, क्योंकि योग तो कर ही रहे ना, कभी दिल खुश तो हो ही रहे, परंतु हम मेहनत कर रहे, मेहनत वाले है, पर मेहनत करना ये भी तो बड़ी बात है, एक वो है जो मेहनत ही नहीं कर रहे, जिन्होंने छोड़ दिया है, ये योग हमारे बस की बात नहीं है, ये बाप समान बनना तुम देख लो, तुमको बनना हो तो बहुत देख लिया, सबकॉन्शियस माइंड ने रिजेक्ट ही कर रखा है इसको, ये पुरुषार्थ विरुषार्थ हमारे काम की बात नहीं है, हमने तो बस सुबह उठना, अमृत वेला किया, मुरली सुनी कि अपनी जो सेवा है वो करो, बस चलो हो गया काम, ये पुरुषार्थ और ये मुरली और उसका वो स्टडी और वो अध्ययन और वो अशरीर, ये हमारे काम में नहीं, ये तो जो बनना है देख लेंगे। वो एक भाई है ना, वो हमेशा कहता था पुरुषार्थ क्या करना है, हमने हमारा पद निश्चिंत कर लिया, एक ही काम करेंगे सतयुग में, जब लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं तो अनाउंसमेंट सुनो सुनो सुनो, लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं, अभी वो गए कि आराम से बैठो, बस अभी ये पद है, इसके लिए पुरुषार्थ तो बहुत ज्यादा करना नहीं है, जिसको लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है बने। दूसरा एक भाई ब्रह्मा बाबा को कहता था कि मैं तो नाई बनूंगा सतयुग में, नाई नाई क्यों बनना है तुम्हें, लक्ष्मी नारायण भी मेरे सामने, लक्ष्मी नारायण मेरे सामने सर झुकाएगा ना, बाल काटेंगे तो सर तो झुकाना पड़ेगा उसके। तो बाबा भी हंसते थे। तो थर्ड टाइप ऑफ योगीज जो बहुत मेहनत करते परंतु सफलता मिलती नहीं, कभी मिलती नहीं, ऐसे ही समझ लो। दूसरे प्रकार के योगी है वो व्यापारी है, उद्योगपति है, व्यवसाय करते हैं, उनको खजाने तो भरपूर है परंतु जो कमाई है कभी ज्यादा कभी कम, कभी एक रस तो कभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये संकल्प से मेहनत करते हैं, फिर खुद भी संतुष्ट नहीं रहते तो दूसरों को कैसे करें। ये भी बड़ी अच्छी कैटेगरी है क्योंकि उनका कमाया हुआ बहुत है, अभी भले नहीं कर रहे पर अभी तक तो कमा रहे थे, अभी अभी कुछ सालों में थोड़ा सोचते हैं बहुत हो गया, अभी बहुत कमा लिया, अभी जरूरत नहीं है कमाने की, वो सेकंड कैटेगरी है योगी की। पहली कैटेगरी कौन सी है योगियों की, नंबर वन योगी है अर्थात निरंतर योगी, योगी जीवन वाले योगी, स्वतः योगी, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी, वारिस, एक दिन की राजाई, दो दिन की राजाई, चार दिन की राजाई वाले नहीं, आज चार घंटा योग कल छह घंटा योग ऐसे नहीं, सदा के योगी, निरंतर योगी। उदाहरण दिया बाबा ने जैसे भक्ति में, भक्ति काल में, द्वापर में जब स्वतोगुणी भक्ति थी उस समय अगर किसी का जन्म पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण भक्ति के हिसाब से यदि हद का वर्षा उनको राजाई का मिलता है तो कैसा नशा होता है, कैसी उनके पास संपत्ति होती है, वर्षे का अधिकार होता है, तो उनको सोचना नहीं पड़ता कि मैं राजा हूं मैं राजकुमार हूं, स्वतः ही नशा रहता है। और ये जो है इसी तरह से ये जो योगी है स्वतः ही योगी है, वर्षे के अधिकार से प्राप्तियों का भंडार भरपूर है, सुख दो शांति दो मांगने की जरूरत नहीं, कोई मेहनत नहीं है, बटन दबाया और खान खुल गई, बटन दबाया और खान खुल गई, ऐसे अटूट योगी है।
संस्कार परिवर्तन करने वाले मतलब ऐसा कुछ पॉइंट था
यहाँ पर संस्कार का पॉइंट नहीं था,
मतलब
कहाँ पर विकर्म विनाश करने वाले, वो तो थर्ड कैटेगरी है जो कि विघ्नों को हटाने वाले और पाप मिटाने वाले, वो थर्ड कैटेगरी में आता है क्योंकि मेहनत है ना वहां पे, ये वो कैटेगरी नहीं है, ये तो फर्स्ट कैटेगरी की चर्चा हम कर रही है। तो पर फिर भी योगी है वो, उनको कम मत समझना, वो योगी ही है, भोगियों की चर्चा नहीं चालू है।
दादी गुजार को एक बार बोलेंगे नहीं, तीन बार बोलना पड़ता तो हाँ माना उपोतंग ही रहते
वो। तो उम्र के हिसाब से भी है ना, तो योगी जो है लक्ष्य हमको बहुत ऊंचा रखना है। फर्स्ट योगी, फर्स्ट नंबर के योगी, निरंतर योगी, योग युक्त। मधुबन वालों के लिए एक शब्द कहा था, मधुबन और विदेशियों के लिए, चात्रक, बड़े स्नेह से चात्रक बन, मुरली सुनने के अभिलाषी है। मधुबन और विदेशियों के लिए वाक्य कहा है याद प्यार में, चात्रक बन, बड़े प्रेम से मुरली सुनने के अभिलाषी, इच्छुक आकांक्षी है। तो ये सारे फर्स्ट कैटेगरी है। अगर सारी मुरली देखा जाए तो फर्स्ट कैटेगरी अर्थात अभी जो बातें बताई वो, दूसरा सदा योगी अर्थात कोई फरियाद नहीं, फरियाद की लिस्ट को क्या कर दो, फाड़ दो। अगर मिटाया पर लिखा हुआ है तो फिर भी कहेंगे कि लिखा हुआ है, इसके लिए कंप्लेंट्स, फरियाद अर्थात कंप्लेन, शिकायत करना, या उसका एक दूसरा भी अर्थ है हिंदी में, पुकार, प्रार्थना, अदालत में जाते हैं ना फरियाद लेकर, तो वो भी एक फरियाद है। एक होता है कंप्लेन, एक होता है वो। तो बाबा ने कहा यहां एक तो याद है या तो फरियाद है, विशेष भूमि में आए हो तो विशेष, इस धरनी में विशेष महान परिवर्तन करके जाना है। कौन सा महान परिवर्तन? फरियाद को छोड़ जाना। हमारे पास एक पेशेंट आई थी, आबू की माता, उसको पूछा क्या तकलीफ है, बोले कितनी, एक दो नहीं बहुत सारी है, लिस्ट निकाली 44 कंप्लेंट्स, इतनी बीमारी, देखकर लग नहीं रहा था कि इतनी ये बीमार है या फिर स्वस्थ ही दिखती थी, पर 42 कंप्लेंट्स। हमने कहा ठीक है अभी भर्ती कर देते, हम भर्ती कर दिया। फिर हर दिन उसकी कंप्लेंट दो दो कम होती गई, दो दो कम होती गई, 7 दिन में सारी कंप्लेंट पूरा, अभी हमने लिस्ट दे दी, ये लो आपकी लिस्ट, इसमें से क्या है अभी बताओ। तो उसने कहा नहीं अभी कुछ भी नहीं है। फिर डिस्चार्ज किया, पर अद्भुत बात, घटना तो तब घटी जब एक हफ्ते के बाद एक नई लिस्ट लेके फिर से आ गई। बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी कहीं और है, बीमारी
कंप्लेन चारों तरफ है,
हर बात की कंप्लेन, हर बात की कंप्लेन, बीमारी कहीं और है, चित्त रुग्ण है, देह रुग्ण नहीं है, रुग्ण चित्त की दशा है, वो अभिव्यक्त हो रही है शरीर के बीमारी के द्वारा, अगर है भी उसमें तो शरीर में थोड़ा बहुत, परंतु बीमार मन है जिसकी अभिव्यक्ति शरीर में हो रही है। इसके लिए कोई भी दवाई काम नहीं करती। दिल वाला बाप, दिलाराम बाप, किसको मिलके हर्षित हो रहे हैं? दिलरुबा बच्चों को मिलकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा के नैनों में कौन समाया हुआ है? कल की मुरली से
दूर,
वो तो दूर वाले हैं जो अपने दिल की लगन से बाप उनके सम्मुख देख रहे हैं। बाप के नैनों में कौन समाया हुआ है? बड़ी अच्छी बात कही है बाबा ने, जिनके दिल से एक ही अनहद साज बाबा करता, हद का साज नहीं, एक ही अनहद साज कौन सा? बाबा है। ऐसे जो बच्चे हैं वो उसके नैनों में समाये हुए हैं। उसके बाद तीन कैटेगरी योगियों की बताई, पार्टियों में क्या क्या कहा बाबा ने? कौन से?
बालक समाधि।
तो जो ये फर्स्ट थर्ड फर्स्ट कैटेगरी है योगी वाले, उनका ये समान है, कौन सा? मैं श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ। और दूसरा समान कौन सा है? मैं अधिकारी हूँ। वही था, मैं अधिकारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ। राजा के बच्चे और नौकरी कर रहे हैं, शोभता है क्या? बाप को भी तरस पड़ता है, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, मैं तुम्हें देने के आया हूं और तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें हीरे देने आया हूं तुम कागज मांग रहे हो, मैं तुम्हें राष्ट्रपति भवन देने आया हूं तुम कहते हो मेरा ये कमरा चेंज कर दो ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें विक्टोरिया ग्राउंड देने आया हूं
सुन बहुत लिया
है। हाँ बाबा ने सबसे मुख्य बात जो कल की मुरली से है वो है अब तक मुरलियां बहुत सुन ली। ज्ञान की परिभाषा बाबा ने बताई, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात स्वरूप में लाना, ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन। भक्ति में भी वही किया तो क्या बड़ी बात, अभी अगर वो किया तो यहां तो एक है स्मृति स्वरूप, एक है स्मृति में लाना एक है स्वरूप में लाना। स्मृति में तो भक्त भी लाते हैं परंतु स्वरूप नहीं बनते ना। संगम युग की तो विशेषता है कि अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रारब्ध, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी प्रारब्ध, ये संगम युग की विशेषता है। अभी अभी स्मृति स्वरूप, अभी अभी स्मृति स्वरूप का अनुभव, ये संगम युग की विशेषता है। प्रारब्ध बाद में मिलेगा नहीं, अभी इसी वक्त। तो संपूर्ण ज्ञान का सार है जो बाबा ने कल कहा ना, एक एक शब्द का अनुभव, यही तो नवीनता है। इस ज्ञान की नवीनता क्या है? अनुभव। आत्मा हूं इसका अनुभव, परमात्मा की अनुभूति, चक्र का अनुभव, हर चीज की अनुभूति, एक एक ज्ञान के पॉइंट की अनुभूति, एक एक गुण की अनुभूति, एक एक शक्ति की अनुभूति, एक एक शब्द की अनुभूति, सब की अनुभूति, यही इस ज्ञान की नवीनता है। बाबा ने जो कल कहा नया दिन नई रात नई दुनिया नया जीवन नया युग, सब कुछ नया है तुम्हारा, तो इसकी नवीनता क्या है? अनुभव। तो लक्ष्य रखना है और अनुभव के लिए हमको थोड़ा एकाग्र होना होगा। कोई भी चीज का अनुभव तुरंत नहीं होता है, बुद्धि उसमें थोड़ी डूब जानी चाहिए। आज बाबा ने झूलों की बात की है वरदान में, छह झूले बताए, कौन कौन से? अतीन्द्रिय सुख का झूला और शांति का झूला,
खुशी का झूला,
खुशी का झूला, ज्ञान का झूला,
आनंद का झूला,
आनंद का झूला,
सुख का झूला,
सुख का झूला, परमात्मा गोद का झूला। उसकी परिभाषा बाबा ने दी है, परमात्मा गोद अर्थात क्या?
लवलीन होता,
याद में लवलीन अवस्था,
उसको श्रेष्ठ संस्कार भी बोला।
हाँ, वही श्रेष्ठ संस्कार से भाग्यवान बनो। ब्राह्मण संसार परिवार संसार में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ब्राह्मण परिवार में, इसके लिए ये संगम युग उस सतयुग से भी श्रेष्ठ है, उस सतयुग स्वर्ग से भी ये संगम युग श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। एक बाप मिला सब कुछ मिला, कल की मुरली में भी था ना, एक बाप दूसरा ना कोई, संकल्प में भी देह भी याद ना आए। अगर देह याद आ गई तो उसके पीछे बहुत सारी है, क्या क्या याद आ जाएगा? देह याद आ गई तो कुशल 25 बातें बताओ, अगर देह याद आ गई तो क्या क्या हो जाएगा? बाबा ने तीन कल बताई, कल की मुरली में बाबा ने कहा देह याद आए तो देह के संबंध, पदार्थ और दुनिया। परंतु देह याद आते ही और बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो कौन कौन सी? देह के साथ क्या क्या याद आता है? सब कुछ, देह का ठंडी गर्मी, देह की प्रकृति, देह की बीमारी, भूख प्यास, व्यवहार और
गुण
अवगुण, और काली है गोरी है,
उसकी अच्छाई
अच्छाई बुराई सब याद आ जाता है। हाँ, किस धर्म का है, कौन सी भाषा बोलता है बोलती है, कौन से जाति के है, नाम बताओ तो व्यक्ति नाम में जाति ढूंढता है। इसके लिए बाबा ने अच्छा किया, फर्स्ट नेम रखा है सबको। अगर यहाँ पे भी पूरा नाम रखा होता तो यहाँ ब्राह्मण भी जाति ढूंढने लगते कि भाई ये तेली है, ये तो ये है, ये सरदार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हो जाता सहज, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार। आज भी नाम की बात कही है मुरली में, नाम तो देंगे नहीं, ऐसा नहीं कि मैम हम भी कृष्ण और वो भी कृष्ण, अरे हर एक का नाम अपना अपना है, ऐसे कैसे हो सकता है सभी कृष्ण हो? नाम के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता इधर,
सबका नाम
है। हाँ, सबका नाम तो है। तो व्यक्ति को तो नाम की आदत पड़ गई है, स्त्री पुरुष देखने की आदत पड़ गई है। सोचो अगर 10 साल पहले किसी एक आत्मा ने आपको कोई गिफ्ट दी, एक बहन ने एक गिफ्ट दी, अभी 10 साल के बाद आपको ये पूछा गया कि किसने दी थी, आप कहेंगे याद नहीं आता है किसने दी थी, उसका नाम नाम भी याद नहीं है, क्या कपड़े पहने थे वो भी कुछ खास याद नहीं है, किस सेंटर के थे वो याद नहीं, पर एक चीज कभी नहीं भूलती कि वो बहन थी या भाई था, बाकी सब भूल जाता है, पर ये भूलता है कि वो बहन थी। वो इतना अंदर सबकॉन्शियस में है, ये स्त्री ये पुरुष, वो आत्मिक दृष्टि की जो बात चल रही है वो कहाँ है अभी पक्की, हमको अभी वही याद रहता है, ये जन्म जन्म के संस्कार है, वो नहीं भूलता है कभी, नेवर, कभी नहीं भूलेगा। तो देह याद आते ही देह की इच्छा है, देह की वासना है, देह की तृष्णा है, देह का रूप, देह का रंग, देह का गंध, देह के भोग, देह के विलास, विलासिता का वो जीवन विकार, ये सारा देह के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए सारी मुरलियों का एक ही फोकस है, देह को भूलो, और वही भूलता नहीं, सबसे बड़ा काम ही है।
बहुत बड़ी मंजिल,
ये मंजिल मतलब वो वैसा ही है, वो कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है ये असंभव सी बात लगती है, परंतु बाबा ने कहा जब भगवान कह रहा है तो हो सकता है, परंतु अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो असंभव ही है। इसी देह में रहना है, पुरुषार्थ भी करना है, इसको संभालना भी है, ऐसा नहीं कि इसको बहुत बहुत ज्यादा भी नहीं संभालना, ऐसा भी नहीं, और बहुत ज्यादा इसको निग्लेक्ट करना ये भी नहीं, दोनों तरफ खतरा है। कई बिल्कुल इसको छोड़ देते हैं, छोड़ो इस देह को, क्या करना है, जाने ही वाला है ऐसे। एक भाई था ना, एक महीना उपवास किया था फिर एडमिट किया था, तीव्र पुरुषार्थ, खाना पीना सब छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाना। एक ज्ञान सरोवर के भी भाई जी को एडमिट किया था, नाम नहीं बताऊंगा,
जादूगर भाई नहीं जा रहा था, खाना छोड़ा
नहीं, छोड़ना अच्छी बात है, अगर ताकत है तो छोड़ो, परंतु अगर ताकत ही नहीं है, एक इधर के ही भाई एडमिट किया था, कितना हीमोग्लोबिन 4, सब छोड़ दिया था खाना, सब कुछ छोड़ दिया था, और किसी को भी नहीं पता, यहां पर भी अभी भी नहीं पता किसी को, गुप्त रीति से एडमिट किया और ठीक करके बाहर निकले, अभी भी है तीव्र पुरुषार्थ। ये भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, ना अति उच्चम ना अति नीचम, इसके लिए जो पहले शुरुआत में कहा ना बैलेंस,
भक्ति हो गई,
ये हट योग था, हटधर्मिता जिसको कहते हैं ना, फैनेटिटिज्म इंग्लिश में कहते हैं, कट्टरवाद, मतलब उसमें चले जाता है व्यक्ति। ये यहां टाली किसके लिए बजती है, रस्ते पर चलने वाले की नहीं, रस्सी पर जो चलते हैं ना उनके लिए टाली बजती है, क्योंकि वहां बैलेंस है। जहां जहां बैलेंस होगा, हमारा मनुष्य का मन अति में डोलता है, उसको अति में जाने की आदत है, एक तो एकदम ही भोग विलास, या एकदम ही पूरा सब कुछ छोड़ देगा त्याग, जैसे सन्यासियों का वही तो है ना, एकदम भोग और फिर जब वैराग आया तो पूरा कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया, गांव जंगल सब कुछ छोड़ के चले गए। उससे नहीं होता, ये मार्ग इतना आसान नहीं है, सन्यास मार्ग फिर भी बहुत आसान है, चले जाओ जंगल में और करो तपस्या, वहां तो किसी से क्रोध करने की बात ही नहीं है, क्योंकि संपर्क में ही नहीं है किसी, क्रोध तो तब आता है जब संगठन में है, तब क्रोध आता है, क्रोध ही संगठन में ही नहीं है तो क्रोध कहां से आएगा। विकार, स्त्री को देखो ही नहीं, पुरुष को देखो ही नहीं, किसी मनुष्य के संपर्क में ही नहीं आओ, बंद कर दो अपने आप को, वहां किसकी कुछ नहीं निकलेगा, संसार को ही छोड़ दिया, कहां का त्याग, ये सारी चीजें छोड़ते हैं, परंतु वो जो मार्ग है उसमें भी वो फ्रस्ट्रेटेड ही हो जाते हैं। कोई भी साधु कोई भी सन्यासी अगर उनके जीवन के अंदर झांको तो पता चलता है बहुत ही गहरा डिप्रेशन है वहां पर, क्योंकि मिला कुछ भी नहीं, सब कुछ करने के बाद दबे हुए फंस, जैसे दमित भावना है वहां पर।
अभी भी जैसे बाहर चले गए घूमने के लिए तो उतना याद कुछ नहीं करता है, कोई विकार चाहे कुछ भी, उतना संक्रमण प्रवेश किए गांव के तरफ या मार्केट के तरफ शुरू होता है
वो, देखो जैसे अंतर मन में सब कुछ है, उसको स्टिमुलस चाहिए, इसके लिए ना वो स्टिमुलस जागृति ना हो, इसके लिए ज्ञान भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, योग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और शरीर की अवस्था का ज्यादा से ज्यादा अनुभव, ताकि वो विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए। उनको थोड़ा सा भी दिखा कि वो बाहर निकलते सब। वे साधुओं ने क्या किया, अभी आपने सुना होगा जितने भी ग्रंथ है उसमें क्या दिखाते थे कि साधु तपस्या कर रहा है, फिर अप्सराएं आ रही है और नाच रही है और उनकी तपस्या भंग कर रही है। अब ये अप्सरा कौन है, ये अप्सरा कोई है नहीं जो निकल गए, वो उनके मन में स्त्री है, स्त्री इतनी भरी हुई है स्त्री की, वो स्त्री को छोड़कर ही संन्यास लिया ना, स्त्री को छोड़ के ही संन्यास लिया, पर मन में तो वही है और वही बाहर निकल रही है और वही अप्सरा बन के नाच रही है और तपस्या को भंग कर रही है। और फिर उन्होंने कहा बरबर है, स्त्री नरक का द्वार, स्त्री नरक का द्वार की कोई बात नहीं है, स्त्री ने कुछ किया नहीं, वो तो निष्क्रिय है एक रीति से। काम विकार पुरुषों में स्त्रियों से कई गुना अधिक है। काम विकार में कभी स्त्री जिसको कहते हैं सक्रिय नहीं इतनी, उसमें तो जगानी पड़ती है काम वासना है, तो बहुत ज्यादा जगती है। पुरुषों में तो 24 घंटे भी व्यक्ति कामुक रह सकता है, स्त्रियों में इतना नहीं है, उसमें जगाओ तो जगती है, अगर नहीं जगाओ तो वो फिर भी इतनी सक्रिय नहीं है उसमें विकारों में, एज पर द स्टडीज अब तक की। और फिर भी क्या कह दिया उसको, यही नरक नरक। और उसने क्या किया, वो कहना भी अपने अंदर जो काम विकार है उसकी अभिव्यक्ति है कि अंदर इतना भरा है और उसके ऊपर थोप रहे, और जब जंगल में चले गए तो वही दिख रही है, और फिर वो कंफर्म किया बस यही कारण है मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है क्योंकि वही दिख रहा है। इसके लिए बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है ये सब। और क्या कहा कल बाबा ने, तो ज्ञान की बाबा यहाँ परिभाषा दे रहे हैं, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात अनुभव, एक एक शब्द का, एक एक गुण का, हर चीज का, वही फर्क है हमारा और उनमें। और क्या कहा,
मुक्त।
हाँ, जो स्वयं मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। इतनों सा भी, जहां ये बात चल रही थी ना, बाबा ने कहा इतनों से भी रस्सी धागा कुछ भी नहीं चाहिए, अगर होगा तो नीचे लाएगा, निर्बंधन नहीं बन सकेंगे। जो निर्बंधन है वही उच्च स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, अगर बंधन है तो चाहते भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को बंधनों से मुक्त करना है। हमने जो बंधन निर्माण करके रखे है, हमारी जो जंजीरें हैं ना, उसको हम आभूषण समझकर हमने सजा के रखे हैं। हाँ, उसके ऊपर हम निकालने की तलवार लोहे के तो फटाफट निकाल के फेंक दिए, पर जो सोने के हैं उनको कैसे निकाले, अच्छे लगते हैं, श्रृंगार समझा है हमने उसे, पर वो भी बंधन है। जो निर्बंधन आत्मा है वही ऊंच स्टेज को पा सकती है कल की मुरली से, अगर बंधन है तो नीचे लाएगा। इसके लिए बाबा ने कहा कोई बंधन नहीं, कोई रस्सी नहीं, संकल्प में भी नहीं, सूक्ष्म बंधन में भी नहीं, मनसा वाचा कर्मणा कोई बंधन नहीं। अगर बंधन आया तो तख्त से सीधा तख्ते पर आ जाओगे, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, नहीं तो चकनाचूर, और वो भी बहुत फास्ट, और कुमार तो बहुत फास्ट चकनाचूर होंगे, बाकी लोगों को तो टाइम लगेगा, गृहस्थी को इधर बहुत फास्ट है, नीचे आने की गति भी फास्ट है, ऊपर जाने की गति भी फास्ट है। कभी विदेशियों को बाबा ने कहा था, विदेशी फंसने में बहुत होशियार है, अभी फास्ट जाने में होशियार बनो। फंसने में, एक दूसरे में फंसने की बात चल रही थी मुरली में, बाबा ने कहा है। और क्या कहा, विजय की बात हो गई, दिल तख्त की बात होगी, फिर बाबा ने चुनने की बात कही थी ना, कि भगवान ने चुना है थर्ड थर्ड पार्टी, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो ये अनुभव हो, और ये अनुभव होने के बाद किस चीज की प्राप्ति होगी, किस चीज का अनुभव होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो, फिर वहां से फिर से वही ज्ञान वाली बात, केवल सुना है या प्रैक्टिकल में भी है, स्वरूप में भी है, अनुभव में भी है, रियलाइजेशन है, फिर से वही बात वहां से रिपीट की। कुछ भविष्यवाणियां की कल बाबा ने, कौन सी, कल की अव्यक्तवाणी
विक्टोरिया हाउस
विक्टोरिया क्या
विक्टोरिया
ग्राउंड एक है विक्टोरिया मेमोरियल एक वहां पे विक्टोरिया स्मारक है उसके बाजू में विक्टोरिया ग्राउंड है और विक्टोरिया गार्डन जो है वो मुंबई में है जिसे अभी जीजा माता उद्यान करते हैं अभी वो भी नाम बदल गया दूसरा वो दूसरा बाबा ने कहा वो भी तुमको तैयार करके देंगे पधारो आओ पधारो वो भी तुमको दे देंगे एक दूसरा अगर सारे ब्राह्मण दिल्ली में इकट्ठा हो जाए तो
पूरी
दिल्ली अपनी बनानी पड़ेगी अगर आबू में इकट्ठा हो जाए तो आबू रोड तक तुमको अपना बनाना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर हो जाएगा 340 कमरे है उसमें 320 एकड़ की जमीन सब इधर हो जाएगा अपना और बाजू में ही मुगल गार्डन है हाँ तो मुरली होने के बाद में मुगल गार्डन में जाके थोड़ी पिकनिक करो और फिर एक और काम कर देना मुगल गार्डन का माली जिसकी पगार पर बाबा की बहुत दिनों से नजर है जब भी मुगल गार्डन की बात आती है तो उसकी पगार बहुत अच्छी है उसको भी मिलके पगार भी पूछ लेना और कोर्स भी करा देना उसका
एक वकील और एक माली
ये दो तो मुगल गार्डन के माली की पगार इस पर बाबा की आंख बहुत समझती है तो मुरली होने के बाद उसको देख लेना मिल लेना कहाँ है वो मुगल गार्डन का माली जिसकी पगार बहुत अच्छी है तो राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर हो जाएगा विक्टोरिया गार्डन तुमको ग्राउंड तुमको तैयार करके देंगे एक दिन आएगा ऐसे कहा ना बाबा ने एक दिन आएगा जो अपने घर में तुमको बुलाएंगे हमारे घर में आओ ये सारी भविष्यवाणी है कब की है 81 की मुरली है ना मेडिटेशन हॉल 81 34 साल पहले ये बोला है भगवान ने तो कुछ भविष्यवाणियां थी फिर कुछ मार्क्स जमा करने की बात थी ये सबसे बड़ा पावरफुल विषय है मार्क्स जमा कैसे होती है रजिस्टर में वो बताओ कल की मुरली से थर्ड पेज फर्स्ट पैराग्राफ नहीं दुआएं लेना तो वरदान था एक दिन का कि तुम दुआएं लो हाजिर होना सबसे पहली बात उपस्थित होना हाजिर होना ये ही सहयोग ये जो है ना यही सेवा है महायज्ञ की हाजिर हो जाना कोई भी संगठन में हाजिर होना उपस्थित होना कर कुछ नहीं रहे खाली हम हाजिर हो गए अवेलेबल वहां पे एवर रेडी दूसरा था एवर रेडी और तीसरा था सहन करना सहन शक्ति का लक्ष्य रखना सहन करना चौथा था सहयोग पांचवा था और भी था क्या था याद करो जरा कल की मुरली डायरेक्शन प्रमाण चलना इसकी भी मार्क्स जमा होती है ये तो बाबा ने बताई मार्क्स कैसे जमा होती है दूसरा है अब मार्क्स कटती कैसी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है मुरली में तो बताया मार्क्स जमा कैसी होती है हाजिर हो जाओ मार्क्स जमा एवर रेडी रहो मार्क्स जमा सहयोग दो मार्क्स जमा सहन करो मार्क्स जमा तन मन धन दे देना मार्क्स जमा डायरेक्शन प्रमाण चलना मार्क्स जमा ये छह बातें बताइए ये सब करो तो तुम्हारी मार्क्स जमा हो जाएगी उदाहरण दिया स्कूल का स्कूल में क्या करते हाँ तिमाही छिमाही जो है ना 3 मास और 6 मास फिर उसका मार्क्स इकट्ठा करके कनेक्शन करते फाइनल तो वैसे यहां पर भी ये जो उपस्थित होना हाजिर होना ये सारी मार्क्स जमा हो जाती है छोटी छोटी बातें हैं जैसे कोई यहां पर ही चलो कोई प्रोग्राम रखा है हम भी गए हैं परंतु मुझे याद है एक बार हम जो उत्तराखंड गए थे वो जो त्रासदी हुई थी तो कोई एक दो भाई भी आए थे साथ में सेवा के लिए परंतु नाम मात्र सेवा के लिए यहां से कुछ यहां वहां से परंतु उनके कुछ दूसरे कार्य चालू थे आए थे सेवा के लिए पर कर कुछ और ही रहते ये बड़ी दुखद घटना है परंतु सत्य है जो सेंटर ने जो दिया था रहने को वो उनको पसंद नहीं आया वो कहे हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाहर रहेंगे, बाहर का कहीं से लिया किराए से, ये अच्छा नहीं है। एक दूसरा, पहुंचे ही नहीं कभी कोई भी सेवा में, दुखद बात है। कुछ और ही चालू था तीन चार दिन भी, यहां घूमना वहां घूमना। हम गए किस लिए थे? जो लोग जो दुखी है पीड़ित है उनकी सेवा करने के लिए, वो सेवा छोड़कर कुछ और ही कर रहे थे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं मार्क्स कैसे जमा होती है, जैसे वो स्टूडेंट की मार्क्स एग्जाम होती रहती है, चार चार महीने में तीन तीन महीने में एग्जाम होती रहती है, वो सारा टोटल लास्ट में ऐड होता है। हम हमारा समय कैसा बिता रहे हैं, सेवाओं में कितनी मदद कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, मर के सेवा कर रहे हैं या खुशी से कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कुछ कि
दिखाने के लिए
कर रहे हैं, आडंबर है दम्भ कर, ये शो कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं पर मार्क्स जमा होती है हर चीज की, हाजिर होना, एवर रेडी होना, डायरेक्शन प्रमाण करना, कोई भी कार्य तन मन धन लगाना, और सबसे महत्वपूर्ण उन चार पांच छह बातों में सहन करना। सेवा करनी है तो सहन करना पड़ेगा। सिक सिक झुक झुक मर मर, ये परिभाषा है समर्पण की। और अध्यात्म में सारी लड़ाई इस मैं से है, आए। अगर हम अध्यात्म में आ गए और हमको लग रहा है हम आगे बढ़ गए, परंतु आगे बढ़ते ही देखा गया है कि मैं भी आगे बढ़ रहा है, ये जो मैं है इसकी साइज भी बढ़ रही है। व्यक्ति आगे तो जा रहा है परंतु मैं की भी अभी साइज बढ़ रही है, पहले तो छोटा मैं था, अभी बड़ा हो गया। वो नाम की कामना, हमारा नाम हो, मान शान, ये सब भी बढ़ते जाता है जैसे इधर बढ़ रहे। ये सूक्ष्म रूप से हम बात कर रहे थे मार्क्स कट कैसे होते, ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमने सेवा की, हम मार्क्स कट कैसे होंगे वो बताओ।
अपोजिट जो सेवा की उसकी प्रशंसा सुनना चाहते
हैं, उसकी प्रशंसा, ये सबसे महत्व, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, सबको पता तो चल जाए ये हमने कुछ किया है, ये हमने किया है, ये सबको पता चलना चाहिए, किया इतना, वर्णन इतना। मम्मा दो मास बेंगलोर रह के आई, किसी ने पूछा मम्मा को, मम्मा सेवा कैसी थी, क्या क्या सेवा की, मम्मा ने कहा अच्छी थी, बस फिनिश, कोई वर्णन नहीं, इतना ही, एक ही शब्द, सेवा कैसी थी, बड़ी बड़ी सेवाएं हुई, सेवा कैसी थी, अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस। और अभी फिर वो जो दो दूसरा भाई था उनके साथ जो गया था, उसने बताया कि ऐसा भी हुआ, ये भी किया, वो भी किया, पर उसने कोई वर्णन नहीं अपनी सेवाओं का। और अभी पावर पॉइंट एक 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 गली कहां जा गए, एक एक गली और एक एक पर्दा और एक एक क्या 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 क्या, कितना वर्णन उसका। गुप्त यहां पर से बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है, सेवा की और उसका वर्णन किया तो आदि तो कट। एक होता है वर्णन करना या सेवा समाचार सुनाना, यह भी ये यज्ञ की विशेषता है, और किसी जगह ऐसी चीज नहीं है। परंतु वो वर्णन कैसे कर रहा है, वो सेवाओं का वर्णन कर रहा है या मैं का वर्णन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे सेवाओं के समाचार, सेवाओं के समाचार नहीं है, मैं के समाचार है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इसमें सब मार्क्स कट होते। जितना जो गुप्त है वो उतना शक्तिशाली। जहां वर्णन करने का आ गया, वर्णन करना भी है तो वो ऐसा वर्णन करो कि उसमें कोई विस्तार ना हो, शॉर्ट। वो करना भी पड़ेगा क्योंकि हम सेवाएं तो करते हैं, और आपको कह दे कि भाई बताओ आप वहां गए थे क्या सेवा की,
तभी तो बड़े
छुट्टी। हाँ, तो वो तो है, मतलब करना तो है, परंतु उसमें वही वाली बात है। फिर ये देखा गया कि वो वर्णन करते 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 वो सेवा का समाचार नहीं, वो मैं का समाचार में परिवर्तन हो जाता है। वहां मैं बोलने लगता है कि देखो हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। जैसे सूरज भाई हमेशा बताते हैं ना, एक बहन है जिसने बहुत सेवा की, बाबा के पास पहुंची, बाबा ने बोला बच्ची बोलो क्या सेवा की, वो कहती है कि मैंने इतने आत्माओं को कोर्स कर, क्योंकि बाबा ने खुद पूछा, वो नहीं बता रही है कि पूछा करके बता रही है कि बाबा मैंने इतने आत्माओं को कोर्स करा, इतने सेंटर खोले, देश विदेश में सेवा की, इतना प्रवचन किए, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, इतना योग किया, बड़ा वर्णन किया उसने। बाबा ने कहा बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? संगम युग पर जो कुछ सेवाएं हो रही है परमात्मा कृपा दया आशीर्वादी का उसको, उसके द्वारा हो रही है, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम ये सोचे कि हम ये कर रहे हैं, ये मूर्खता है, स्वयं को ही आत्म प्रवंचना जिसको कहते हैं, सेल्फ डिसेप्शन है। हम स्वयं को ही धोखा दे रहे, हम सोच रहे हम कुछ कर रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, स्वतः ही हो रहा है सब कुछ। इसके लिए यहां पर भी मार्क्स कट होती है, और मार्क्स कहां कट होती है?
अपने आप को सिद्ध करते,
अपने आप को सिद्ध और जिद करना, उसमें मार्क्स कट होती है।
मैं राइट हूं।
और सेवा की, सेवा का वर्णन किया, वहां मार्क्स, स्वार्थ भावना से सेवा की अगर तो वहां पर भी मार्क्स कट होते हैं।
हल्के भाव से
बिल्कुल, उसमें कोई विश्व कल्याण की भावना, ये अभी ऊंची ऊंची बात है। अगर स्वमान में सेवा नहीं कर रहे,
जिम्मेवारी
नहीं ले रहे, ऐसी ही सेवा कर रहे, तो आपको बोलो भाई ये काम करो, हमने किया ही नहीं, सोचा कल देखेंगे,
ड्यूटी बोलते हैं।
हाँ, उसको बस ड्यूटी, जो जैसे गवर्नमेंट सरकारी नौकर होते हैं ना, 9 से 5, 5 के बाद कुछ भी आया तो नहीं करेंगे, वो अभी कल वो नौकरी है, ड्यूटी। वो जैसे माँ होती है ना घर में, उसका बेटा अगर बीमार पड़ गया तो वो कहती है कि अब मेरा ड्यूटी तो खत्म हो गया 5 बजे, अब देखा इसका क्या करना है, वो नहीं कहती, उसको घर है, उसका बेटा है, वैसे ये परिवार है, यहाँ पे कोई ड्यूटी की बात नहीं है। 24 घंटे में से कभी भी बुलाया जाए तो हाजिर, एवर रेडी के मार्क्स है, और एवर रेडी नहीं है तो मार्क्स कट। उसमें जो 5-6 बातें हैं ना, उसके अपोजिट जो भी है वो सारे मार्क्स कट। सेवा है, हम हाजिर नहीं हुए, मार्क्स कट। जो मैंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया ना, सेवा में गए हाजिर नहीं हुए, मार्क्स कट। वहां पे बताया गए थे, हम इतनी सारी ब्रेड लेके गए थे मधुबन से, इतनी सारी ब्रेड, तो वहां पे जो आ रहे थे लोग पीड़ित, हम वहां पे रुके थे एक जगह हरिद्वार के सामने, देहरादून के हरिद्वार में, तो वो आचार्य ने कहा कि सुबह सुबह वो ब्रेड लाके दे दो, वहां जो बनाने वाले थे। हमने कहा हमको ये सेवा में सफल करना है, तो वो ब्रेड का वो बना रहे थे, क्या कहते हैं उसको, वो बेसन में डाल के ब्रेड पकौड़ा। तो बोले पर 6 बजे आ जानी चाहिए, हमारे भाई लोग पहुंचे 9 बजे। वो बोले अब मैं क्या करूं, वो सेवा पूरी हो गई, फेंक देना, वो तो ऐसी क्या किया पता नहीं। फिर उसका सेवा करने के तो गए, पर किया क्या? तो हाजिर न होना, ये भी मार्क्स कट हो जाती है। और ट्रैफिक कंट्रोल 1-5 मिनट बाद हम पूरा ही कर देते हैं। और अलबेलापन, अलबेलापन है तो मार्क्स कट हो जाएगी। और आलस्य कहो, अलबेलापन कहो, थोड़ी विस्मृति कहो, या फिर टकराव है सेवाओं में, ईर्ष्या का भाव, जैसे अभी वरदान था ना उस दिन, क्रिटिसिज्म, घृणा, ईर्ष्या, ये 3 चीजें से मुक्त होना है तो मास्टर दाता बनोगे। ईर्ष्या खुद को भी जलाती है, दूसरों को परेशान करती है, घृणा खुद गिराती है, दूसरों को गिराती है, खुद गिरते हैं दूसरों को गिराते हैं, तो ये सारी बातें है। क्रिटिसाइज, किसी को दुख देना, दिल शिकस्त बना देना, ये सब बातें है। तो सेवाओं में ये सारी जो बातें हैं, ये हमारी मार्क्स को कम करते हैं। हमें केवल रोज ये चेक करना है कि जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें मार्क्स जमा होनी चाहिए, मार्क्स कहीं कट ना होने चाहिए। ठीक है, सारांश में हम अपने जीवन में कुछ धारणाएं बना ले इस मुरली के आधार से, जैसे कंप्लेंट की जो बात थी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी कंप्लेंट लेकर हम नहीं जाएंगे बड़ों के पास, किसी को भी साथी नहीं बनाए। कुमार जीवन में इंडिपेंडेंट ही रहना है, अकेला ही रहना है। अगर किसी को साथी बनाने का प्रयत्न किया तो गिर जाओगे नीचे, किसी भी देहधारी को, चाहे कोई भी हो। फिर कंप्लेंट नहीं लेके जाएंगे, एक बाप दूसरा न कोई, ये पार्ट को फिर से पक्का करेंगे। तीसरा
टकराव,
ये जो सेवा में हमारे मार्क्स कहाँ चले जा रहे हैं, सेवा तो कर रहे पर व्यर्थ बातें कर रहे हैं सेवाओं में, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, परदर्शन, ये क्या किया, इसने क्या किया, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या होगा, ये सारे मार्क्स को कट करते हैं। हमें एक अंतर्मुखी अवस्था में रहना है, एकांत में रहना है, याद में रहना है। नंबर वन योगी की जो परिभाषा बाबा ने दी है वो चरितार्थ हो हमारे जीवन में, उसका लक्ष्य रखना है। और रोज की जो मुरली है उसके ऊपर चिंतन करते रहना और योग के चार्ट को पढ़ाना। पढ़ाई बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा था ना, शनिवार की, याद का चार्ट और रजिस्टर का चार्ट, पढ़ाई का चार्ट और चलन का चार्ट, दो चार्ट है, एक होता है पढ़ाई का, एक है चलन का, तो दोनों हमारे बढ़ते रहे। क्या कहा?
ज्ञान की परिभाषा बताई थी मैं आपको,
कल की मुरली। तो इस तरह से ज्ञान की गहराई में जाना है तो जो हलचल है वो समाप्त हो जाएगी, और किसी में भी अटकना नहीं है, कहीं पर भी नहीं। हम इंडिपेंडेंट, जैसे वो दत्तात्रेय के जीवन में दिखाते हैं ना, वो सीखता है, वो जाता रहता है, एक बार तो देखता है एक स्त्री है, वो कूट रही है उससे, इधर की हाथ में चूड़िया है, इधर की हाथ में चूड़िया है, कूटती रहती है, इधर भी बजती है, इधर भी बजती है, तो फिर एक निकाल के इधर रखती है, फिर करती है, फिर भी बज रही है, फिर एक निकाल के रखती है, फिर एक निकाल के रखती है, फिर भी बज रही है। जब एक हाथ में इधर एक बज जाती चूड़ी, इधर एक, फिर नहीं बजती, तो वह कहता है ये भी मेरी गुरु है। 24 गुरु की है ना उसमें से, उसने ये एक गुरु है कि अकेला ही रहना चाहिए सन्यासी में, अगर कोई साथ में है तो बजेगा। यहां के लिए बात है, संगठन में तो है परंतु मन से, कहीं पर भी बुद्धि से, मन से किसी को साथी नहीं बना, ना तो घूमने के लिए कोई साथी चाहिए, ना तो मुरली में जाने के लिए साथी चाहिए, कहीं जाने के, ना ही सेवाओं के लिए कोई साथी चाहिए। कोई है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसका कोई गम नहीं, है तो बहुत अच्छा और नहीं है तो दुख भी नहीं।
योग के लिए
तो चाहिए ही नहीं किसी की, वो पवित्र प्रेम वाली कहानी हो जाएगी, पवित्र प्रेम वो चाहिए तो योग लगेगा, योग उसके साथ लगाना है या बाप के साथ लगाना है, प्रश्न वो है। चाहिए ना लोगों को, कोई हॉस्पिटल में ऐसा ही है, चलो मधुबन में चढ़ने के लिए कोई साथी मिले तो जाएंगे, नहीं तो छोड़ो आज का योग इधर ही।
बाबा कहते संगठन में योग करो,
संगठन में योग का अपना महत्व है, उस संगठन में योग में हम संगठन से थोड़ी योग करते हैं, पर हम तो बैठे, शरीर बैठा है संगठन के साथ, परंतु योग तो उसी से है ना। अगर हम संगठन में है भी, और अभी कल परसों की मुरली में था ना, भाई बहनों को रिस्पेक्ट करना है, पर योग याद थोड़ी करना है, आज के इसमें भी है रिस्पेक्ट की बात, तुमको रिस्पेक्ट देना, इसका मतलब थोड़ी ना याद करना, उस दिन मुरली में भी था, योग थोड़ी लगाना है एक दूसरे से। संगठन उसको जो बहुत सारी बातें इस तरह की है ना, मिसअंडरस्टूड बातें है,
सकाश देते
हैं वो ठीक है आप, पर सकाश देने का अधिकार भी उन्हीं को है जो स्वयं नष्ट हुआ है। एक मुरली में बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। अगर आपका इसमें मोह है बहुत और मैं उसी को सकाश दे रहा हूँ, नहीं होगा। पहले तो मोह को खत्म करो, ऊपर उठो और फिर सकाश दो।
अन्य आत्माओं से न्याय नहीं कर रहे, उनको सकाश नहीं दे रहे, एक को ही दे रहे हैं।
चलो एक को देना भी बहुत अच्छा है, पर पहले नष्ट मोह हो जाओ उससे। या फिर नष्ट मोह की एक परिभाषा है, एक में मोह है ना, तो मोह को सार्वजनिक बना दो, फिर सब में मोह कर दो, तो वो नष्ट मोह की ही अवस्था है। इसमें भी मोह, उसमें भी मोह, ये नहीं हो सकता है, वो तो फिर विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। सार्वजनिक मोह जिसको कहते हैं, तो रहमती बनी। तो इसके लिए वो जो संगठित योग, एक है अकेला चलना, एक है संगठन में चलना, दोनों बातों को बहुत सूक्ष्म है इनको समझना। संगठन में चलना अर्थात क्या? दूसरे पर आश्रित हो जाना। संगठन में चलना अर्थात क्या? दूसरे योग करेंगे तो हम करेंगे, जब प्रोग्राम बनेगा कल से अमृत वेला सबको करना है तब हम करेंगे, नहीं तो कमरे में सब बैठ के सो रहे, क्या ये है संगठन? ये उसकी परिभाषा नहीं है।
सेनेटर में जाते हैं ना, चार लोग एक उठते हैं तो वो भी पता चल
गया, चलो टाइम हो गया। यहाँ तो मतलब ऐसा है 7:30 का, जैसे मतलब जैसे बैठे हैं अभी, कब 7:30 बजते, कब 7:30 बजे, 7:30 बज गए किचन में और पूरा पता नहीं अभी खाना खत्म ही होने वाला है, जैसे बिल्कुल पहला हमको मिलना चाहिए इससे पहले कि कोई खत्म हो जाए।
अरे
गर्मा मेन यही चीज है, इनको समझना, ये है हमने हजारों बार सुनी है बातें, परंतु बाबा ने अगर वो कहा है तो ये भी कहा है, बाबा ने ये भी कहा है, जैसे स्टूडेंट एकांत में जाके पढ़ते हैं वो भी सत्य, बाबा ने ये भी कहा है तुमको ये सबके साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, झगड़ा नहीं होना चाहिए तुम्हारा, एक दूसरे से टकराव नहीं होना चाहिए, लून पानी नहीं होना है तुमको, एक दूसरे से अनबन नहीं होनी चाहिए। एक मुरली पूरी उस पर थी लास्ट की लास्ट चप्ता। तो ये सारी तो बातें हैं, परंतु ये बातें तभी होगी जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। जगदीश भाई कहते हैं ना, अवस्था से व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है हमारी आसपास वो अवस्था से ही होगी। हमारी अवस्था नीचे है तो कहां बुद्धि भटकती है, कहां क्या इंटरेस्ट रहता है, कहेंगे चलो आज क्या करना है, चलो आज कुछ नया बनाते हैं खाने का, गए और लग गए, योग रह गया बाजू में, सब रह गया बाजू में, ये सब होता है। अच्छा अच्छा